अभिमान आधी रात बीत जाने के बाद आशिका के पास अपने ऑफिस में बने घर पर आया हुआ था। थोड़ी देर पहले ही उसे पता चला था कि आकाश जिस लड़की से शादी करना चाहता है वो कोई और नहीं आशिका है, और आशिका जिस इंसान से छुपती फिर रही है वो उसी का बाप है। अभिमान इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। उसे तो ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में आशिका से कैसे बात करे। वो कुछ भी करके बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। अभिमान खुद नहीं जानता था कि उसके दिल में ये फीलिंग कहाँ से आई थी कि उसे आशिका को प्रोटेक्ट करना है। आकाश से बात करते वक्त थोड़ी देर पहले ही अभिमान को ये एहसास हुआ था कि आशिका उसके लिए कितने मायने रखती है। वो चाहता तो आसानी से आकाश के साथ डील करके आशी से शादी कैंसिल करवा सकता था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी के बजाय आशिका को चुना। वहीं इतनी रात को अभिमान को इतना बेचैन होकर अपने पास देखकर आशिका इतना तो समझ गई थी कि बात सीरियस है। वो अभिमान से बार बार पूछ रही थी, लिसन, तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी तुमने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। अभिमान, मैंने लगभग तुम्हारा सारा काम कर दिया है और 3-4 दिनों में तुम जो चाहते हो वो जाएगा, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आशिका ने गहरी सांस लेकर कहा। अभिमान को इस बात की खुशी होनी चाहिए थी कि आशिका ने उसका काम इतनी जल्दी कर दिया, लेकिन खुश होने के बजाय उसके चेहरे पर वही परेशानी के भाव थे। उसका कारण आशिका समझ नहीं पा रही थी। देखो, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कैसे पता चलेगा, मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है जो खुद से समझ सकूं। सच बताओ, तुम्हारी परेशानी का कारण मैं हूं ना, आशिका ने अभिमान की आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में पूछा। इस वक्त उसे भी काफ़ी बुरा लग रहा था। उसकी वजह से अभिमान बेवजह तृप्ति और उनके चक्कर में फंस गया था। अभिमान ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे लिए परेशान हूँ आशिका। इतना कहकर अभिमान कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी नज़रें झुक गई थीं। उसे कैसे भी करके आशिका को सब सच बताना ही था। अभिमान ने खुद को मजबूत किया और आशिका की तरफ देखकर कहा, आशिका, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी किसी ऐसे आदमी से करवाना चाहती है जो तुमसे उम्र में बहुत बड़ा है और एक अच्छा इंसान नहीं है, इलीगल काम करता है? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था, आशिका ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, मेरा खुद का बाप है, अभिमान ने धीमे स्वर में कहा। आकाश का सच सुनने के बाद आशिका को झटका सा लगा। उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि आकाश का अभिमान की उम्र का बेटा होगा। आशिका ने थूक निगला और सक पकाते हुए पूछा, क्या उनका तुम्हारी मॉम से डिवोर्स हो गया है? अभिमान ने बिना कुछ कहे ना में सिर हिला दिया था। आकाश जैसा इंसान वैसे भी गैरकानूनी काम करता था, तो उसके लिए कानून तोड़ना आम सी बात थी। आशिका कुछ बोलती उससे पहले अभिमान ने भरी आवाज़ में कहा, मेरी मॉम पिछले 12 सालों से उनके आने का इंतज़ार कर रही हैं। उन्होंने कभी मेरी मॉम को खुशी नहीं दी, हमेशा उन्हें ब्लेम किया कि उनके साथ उन्हें ज़बरदस्ती रहना पड़ रहा है, और इसी वजह से मेरी मॉम हमेशा बीमार रहती हैं। मेरे लिए मॉम हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती रहीं, ये सोचकर कि मेरे सिर पर हमेशा बाप का साया बना रहे। एक बार मॉम ने रंगे हाथ उन्हें किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया था। मॉम को तब पता नहीं था कि उनके और लड़कियों के साथ भी रिलेशन है। उन्हें यही लगता था कि वो इस शादी में खुश नहीं है, बस इसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। उस दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। 3 दिन तक उन्हें ट्रॉमा की वजह से होश नहीं आया था और वो बहाना बनाकर निकल गए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब मॉम को उनकी इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। अभिमान बस आशिका को निशा की कंडीशन बता रहा था और साथ ही ये कि आकाश ने अब तक निशा के साथ कैसा बर्ताव किया था, लेकिन उसकी बातों से आशिका को लगा कि वो आकाश और निशा की शादी के बीच में आ गई है। आशिका को लगा कि अभिमान उसे गलत न समझ ले। बस यही सोचकर आशिका उससे थोड़ा दूर खिसकी और धीमी आवाज़ में कहा, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी मॉम की शादी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। ये सब मेरी सौतेली बहन और मॉम की वजह से हो रहा है, जिसने मिस्टर स्काई से इतना बड़ा लोन लिया। उनके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं तो उन्होंने मेरा सौदा कर दिया। मैं तो उन्हें जानती तक नहीं हूँ। पहली बार मैं उनसे तब मिली थी जब मेरी मॉम ने मुझे किसी शादी में ले जाने का कहा और एक दुल्हन की तरह तैयार करके उस आदमी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया था। मैं खुद उनसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तुम मुझे गलत तो नहीं समझ रहे ना? अभिमान ने आशिका की गलतफहमी को तुरंत दूर करते हुए कहा, तुम्हें इस तरह गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है आश। मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं रही होगी, वो इंसान है ही ऐसा। सच कहूँ तो पहली बार जब मुझे उनकी शादी के बारे में कॉल आया था, तब मुझे लगा कि उनसे शादी करने वाली लड़की बिल्कुल उन्हीं की तरह होगी जो पैसों के चलते अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी कर रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा यकीन करो। मैं तो खुद उनसे छुप रही हूँ। तुम्हारा काम होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी और यही कोशिश करूँगी कि वो मुझे कभी ना ढूंढ सकें, आशिका बोली। मुझे तुमसे नज़रें मिलाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अफसोस हो रहा है कि मैं उस घटिया इंसान का बेटा हूँ और वो मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, अभिमान ने अफसोस भरे लहजे में कहा। कैसा फ़ायदा? कहीं उन्हें पता तो नहीं कि मैं तुम्हारे पास हूँ अभिमान, आशिका ने जल्दी से पूछा। उसे डर लग रहा था कि कहीं स्काई उसे पकड़ ना ले।
अभिमान जिस तरह इतनी रात को जल्दबाजी में उसके पास आया था, उसे साफ था कि जरूर कोई गड़बड़ है। ऊपर से अभिमान काफी परेशान और घबराया हुआ भी लग रहा था। अब अभिमान अपनी जिंदगी का कोई भी राज आशिका से छुपाकर नहीं रखना चाहता था। उसने कहा, जरूर सलीना ने ही उन्हें मेरे बारे में बताया होगा। आशिका, वे चाहते हैं कि मैं तुम्हें उन्हें सौंप दूं और बदले में वो मुझे मेरी ही पत्नी के साथ पब्लिकली शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। एक सेकंड, अब इसमें बीच में तुम्हारी शादी कहाँ से आ गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभिमान, आखिर इन सब में तुम्हारा क्या लेना देना है? आशिका ने हैरानी से पूछा। लगता है मुझे तुम्हें सब सच बताना ही होगा, अभिमान ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम ये तो जानती हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, लेकिन जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वो मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ और आज तक हम दोनों कभी क्लोज नहीं आए। इवन मेरी शादी के बारे में हमारी फैमिली के अलावा और कोई नहीं जानता। अब तक वो लड़की मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं हमारी शादी सबके सामने अनाउंस करके एक ग्रैंड वेडिंग करूं। अब तक मैं उसे टाल रहा था, लेकिन मेरे डैड तुम्हारे पीछे यहां तक आ गए। आई डोंट नो उनका क्या फायदा है, क्योंकि बिना फायदे के वो कोई काम नहीं करते। उनकी वजह से अगले हफ्ते मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ रही है। उन्होंने मुझे उससे बचने का एक ऑप्शन दिया है, बदले में मुझे उन्हें तुम्हें देना होगा। हालांकि इन सबके बीच अभिमान ने आशिका जिक्र एक बार भी नहीं किया था और न ही उसकी और आशिका की शादी किस तरह हुई थी या आशिका को बताया था, पर एक बात साफ थी कि इन सब में अभिमान का ही फायदा था। आशिका घबराकर उससे कुछ कदम पीछे हो गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं अभिमान उसे आकाश के हवाले न कर दे, तभी वो इतनी रात को उसके पास आया था। उसे खुद से डरता देखकर अभिमान ने दोनों हाथ हवा में किए और सिर हिलाकर कहा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है ऐश, मैं उन्हें कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे उस लड़की के साथ जबरदस्ती शादी ही क्यों न करनी पड़े।
आशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने बस अपना सिर पकड़ लिया था। इतनी ही देर में न जाने कब आकाश और अभिमान के बीच ये बातें हुई थीं और वे डील करने के बारे में सोच रहे थे। आशिका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसने भारी आवाज में कहा, लगता है आजकल सौदा करने के लिए मैं सबकी फेवरेट बन गई हूँ। पहले मेरी मॉम ने अपने पैसे चुकाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, तो अब तुम्हारे डैड तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए मेरा यूज़ करना चाहते हैं। कोई कुछ भी करे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बोलते हुए अभिमान आशिका के पास आया और उसे यकीन दिलाने के लिए उसे अपने सीने से लगा लिया। आशिका ने भी उसे नहीं रोका। इस वक्त उसे सच में किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उसे सहलाकर ये कह सके कि सब ठीक है। आशिका भागते भागते थक गई थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। पहली बार वो इतना रिलैक्स फील कर रही थी, लेकिन ये राहत कुछ ही पलों की थी। आशिका जल्दी से अभिमान से अलग हुई और बोली, क्या तुम मुझे बताओगे कि मिस्टर स्काई और तुम्हारे बीच ये सब बातें कब हुई थीं? अभी थोड़ी देर पहले, डोंट वरी, मैंने उन्हें साफ मना कर दिया है, मैं तुम्हें उन्हें नहीं देने वाला हूँ, अभिमान ने जवाब दिया। और उसके तुरंत बाद तुम मेरे पास आए हो? आशिका ने आगे पूछा तो अभिमान ने हाँ में सिर हिला दिया था। अभिमान के इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आशिका समझ गई थी कि अनजाने में उसने उसे मुसीबत में डाल दिया है। आशिका ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम्हें तुरंत मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। तुम अपने डैड को नहीं जानते हो, लेकिन वो बहुत कनिंग है और अब तक समझ गए होंगे कि उस बहस के बाद तुम सीधा मेरे पास मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आओगे। आशिका का शक सही था। नीचे आकाश एआर एम्पायर्स पहुंच चुका था। वहीं पूरा मामला समझ में आते ही अभिमान ने भी अपना सिर पकड़ लिया था। अनजाने में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। दूसरी तरफ डिनर के बाद अभिमन्यु अपने घर जा चुका था। उसने केशव और राधिका को इस बारे में बता दिया था कि वो इशिका के सामने अब उसका बचपन का दोस्त बनकर मिलने वाला है और साथ ही उसने उसे शादी के लिए भी प्रपोज किया है। राधिका ने यही सोचा था कि वो इशिका को इस बात के लिए कन्विंस करेगी कि वो अभिमन्यु से शादी कर ले। अभिमन्यु के जाने के बाद नीचे केशव और राधिका बात कर रहे थे तो ऊपर इशिका कमरे में आराम कर रही थी। इशिका अभिमन्यु के बारे में सोच रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। मिस्टर राजवंश सच में काफी सुलझे हुए इंसान हैं। किसने सोचा था कि बचपन का वो जिद्दी लड़का बड़ा होकर इतना समझदार हो जाएगा? साथ ही मुझे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि उसे ये प्रॉमिस याद भी होगा। तभी मैं सोचूं कि उसकी खुशबू और वो इतना जाना पहचाना सा क्यों है, इशिका ने खुद से कहा। अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए इशिका का मन किया कि वो उससे और बात करे। वैसे भी आज उनके बीच काफ़ी बातें हुई थीं, लेकिन काफ़ी देर हो जाने की वजह से इशिका ने अभिमन्यु को इस वक्त कॉल करना सही नहीं समझा। इशिका ज़्यादा से ज़्यादा अभिमन्यु के बारे में जानना चाहती थी। तब उसने अपना मोबाइल निकाला और उसमें अभिमन्यु के बारे में सर्च करने लगी। पहले अभिमन्यु की अचीवमेंट्स और बाकी चीज़ों को पढ़कर उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, लेकिन अचानक वो खुशी परेशानी में बदल गई थी। मुझे लगा नक्श झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे अभिमन्यु से ये उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब नक्श सही था। जब मिस्टर राजवंश पहले से शादीशुदा हैं तो वो मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं और उन्होंने झूठ क्यों बोला, इशिका ने मायूसी से कहा। इस वक्त उसकी नज़र स्क्रीन पर आ रही उस न्यूज़ पर थी जहां अभिमन्यु ने इशिका को वसुधा के बर्थडे पार्टी में पहली बार अपनी पत्नी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। इशिका का चेहरा फोटो में क्लियर नहीं था। ऊपर से उस पोर्टल पर न्यूज़ भी सही नहीं थी।
वो आधी अधूरी न्यूज़ देखने के बाद इशिका को अपने सामने सब घूमता हुआ नजर आने लगा। ऐसा लगा कि उसके सारे सपने एक पल में ही बिखर गए हैं।